أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ناظرین کرام السلام علیکم
پروگرام آگاہی کی ایک اور اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام خداوند عالم نے انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے
کے لیے مختلف افراد کی ضرورت ہے مختلف معاشروں کی کسی نہ کسی معاشرے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی گزار سکے اب اسی سسٹم پر قرآن مجید کو بھی ڈیفائن کرتا ہے قرآن مجید بھی اگر ہم اس کی آیات کا مطالعہ کریں تو 99% آیات اجتماعیت کے عنوان سے ہیں اور 1% آیت خدا بند عالم نے انفرادیت کے حوالے سے بیان کی جو علماء بیان کرتے ہیں آج ہم نے پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے استاد کو دعوت دی ہے کہ جنہوں نے اپنے 26 سالہ کیریئر میں ایک بھی ناغہ نہیں کیا اور الحمدللہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے میں بات کر رہا ہوں پروفیسر مہدی حسن صاحب کی آپ 4 کتابوں کے الحمدللہ مصنف ہیں اور تقریباً 10,000 سے زیادہ اس کی کاپیز پرنٹ ہو چکی ہیں آج آپ سوشیولوجی کے پروفیسر ہیں اور آج انہوں نے زحمت کی اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے ہیں السلام علیکم سر
السلام علیکم
سر آپ کا ان جو ٹاپک رہا ہے ہمیشہ سوشیالوجی ہے آپ نے سوشلائزیشن پہ کام کیا ہے آج ہم نے پروگرام بھی اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے کہ ہم بات کر سکیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی سوشلائزیشن کس طرح ہونی چاہیے یا اس کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے کہ وہ آگے جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزار سکے تو اس سے پہلے ہم سب سے پہلے جو آغاز کریں گے میں چاہوں گا مختصر نہ بیان کریں اکثر لوگ جب بھی سوشلائزیشن کی بات آتی ہے تو اس کو لوگ سوشلزم سے جو ہے نا مربوط کرتے ہیں تو ایک تو تھوڑی سی تعریف کی جگہ خود سوشلائزیشن کیا ہے اور اس کا سوشلزم سے کیا تعلق ہے کیا تعلق ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں
ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب دو اصطلاحات آپ نے استعمال کی ہیں ایک سوشلائزیشن اور دوسری سوشلزم سوشلائزیشن اور سوشلزم جو دونوں اصطلاحات ہیں ان کا تعلق ہے سوشیالوجی سے سوشیالوجی بیسیکلی ایک سوشل سائنس ہے اور سوشل سائنس میں جو بنیادی تھی جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اس میں سوشلائزیشن سے مراد سماجی تربیت اس کی سماجی تربیت بھی اس طرح میں ترجمہ کر سکتے ہیں اور معاشرتی تربیت بھی کر سکتے ہیں لیکن سوشلائزیشن اور سوشلزم میں یہ فرق ہے کہ سوشلزم بیسیکلی ایک نظریے کا نام ہے اب میں اس کی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ جہاں بھی آپ لفظ ISM کا لفظ استعمال ہوگا وہ کسی کے ساتھ بھی اس کے لاحقہ لگا ہوگا ٹھیک ہے مثلا سوشلزم کیپٹلزم کمیونزم تو ازم سے مراد نظریہ ہوتا ہے تو اس طرح کیپٹلزم یعنی سرمایہ کا نظریہ ٹھیک ہے سوشلزم اشتراکیت کا نظریہ تو یہ نظریے کی بات ہوتی ہے رہا دوسری بات کہ آپ نے کہا سوشلائزیشن تو سوشلائزیشن کے لیے سوشلائزیشن معاشرے میں انسان کی زندگی گزارنے کے آداب ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہ کے کس طرح سے زندگی بسر کرے گا تو اس کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے تو اس کو ہم تربیت یا معاشرتی تربیت یا انگریزی میں سوشلائزیشن کہتے ہیں
بہت خوب یعنی دونوں جو ہے نا بالکل الگ الگ چیز ہیں
ایک نظریہ ہے اور ایک پوری لائف ہے اس کی اس کو اچھا پھر اپنے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کیسی ہے اس حوالے سے ہم کی سماجی تربیت کرتے ہیں
اچھا اگر ہم کسی کے سوشلائزیشن پہ بات کریں کسی کے سوشلائزیشن کرنا چاہیں تو اس کے جس کی ہم کر رہے ہیں اس کے امیج کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی معاشرہ اس کو کس حیثیت سے دیکھ رہا ہوگا کسی کا سوشلائزیشن اچھی طرح کر دی تو اس کو معاشرہ کس حیثیت سے دیکھ رہا ہوگا
اصل میں دیکھیں ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں ان اقدار سے ہی وہ معاشرہ پہچانا جاتا ہے جیسے اگر ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم معاشرے کو مختلف حوالوں سے تقسیم کر سکتے ہیں مثلا ایک معاشرہ جیسے مشرق کا معاشرہ ایک مغرب کا معاشرہ ہے ٹھیک ہے تو مشرق کے معاشرے کی اقدار جو ہیں وہ الگ ہیں مغربی معاشرے کے اقدار الگ ہیں تو جب بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی اس ماحول کے مناسبت سے اس کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ اس ماحول میں رہنے کے قابل ہو جائے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان کیسے یا وہ جو معاشرے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس معاشرے کے جیسے تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کی وہ تربیت کی جاتی ہے مشرق کا معاشرہ ہوگا تو بچے کو ویسی مثال کے طور پہ اب مثال دے دوں کہ مشرق کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے کو شروع سے اس چیز کے اوپر تربیت دی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یعنی اس ایک جملے کو سامنے رکھ کے پوری زندگی بچپن سے لے کے جوانی جوانی سے لے کے بڑھاپا उस तक जो भी अमल करता है उसके पीछे ये आइडियोलॉजी होती है कि लोग क्या पसंद करते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। तो लोगों की पसंद के मुताबिक इस तरह मतलब ये होता है कि वो लोगों का गुलाम होता है या माशरे का गुलाम होता है। माशरा जैसा पसंद करता है, मसलन लिबास माशरा जैसे पसंद करता है वैसा लिबास पहनेगा, जो रसूमात माशरा पसंद करता है वो रसूमात के मुताबिक जाएगा, जैसी ज़बान माशरा पसंद करता है वैसी वैसे जो अकदार पसंद करता है उसके, तो इस तरह माशरे के मुताबिक उसको गुलाम बना के उसके लिए तरबियत।
अच्छा अच्छा, खूब खूब, मतलब माशरे को देखते हुए
उसकी तरीबी उस माशरे इस, लेकिन इसी के तनाजुर में अगर मगरिब में देंगे तो वहाँ की आइडियोलॉजी ये है कि आपको माशरे से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, ये आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे चाहे ज़िंदगी बसरें। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ इंसान माशरे का गुलाम है, यहाँ वो अपने मर्ज़ी का गुलाम है, जो उसकी मर्ज़ी चाहती है जैसी ज़िंदगी बसर करना चाहता है वो। तो उस माशरे में इस तरह से तरबियत की जाती है कि तुम आज़ाद हो, तुम किसी के पाबंद नहीं हो, जो तुम्हारा दिल चाहे जैसी चाहे ज़िंदगी बसर करो।
सही। अच्छा सर, हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये तो उन जनरल बात हो गई कि सोशलाइजेशन, अगर हम बात करें बच्चों की सोशलाइजेशन तो उससे क्या मुराद होता है बच्चों की सोशलाइजेशन करना? क्या ये वही तरबियत जिसे हम कहते हैं इस्लामी तरबियत, ये वही चीज़ है या एक अलग से कोई और चीज़ है सोशलाइजेशन, या तरबियत का एक पार्ट है, ये क्या चीज़ है?
मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया ना, देखिए इंसान एक माशरे का में जब लोगों के दरमियान ज़िंदगी बसर करता है तो माशरे के तकाजे होते हैं कि जैसे आप किसी भी महफिल में बैठे हैं, शादी की महफिल है, क्या कहते हैं मौत की महफिल है, क्या कहते हैं तकरीब है या कोई मौका है, तो उस मौके के लिहाज से इंसान ने क्या करना है, तो उसको इस तरह से तरबियत दी जाएगी कि शादी के मौके पर आपका बिहेवियर क्या होगा जिसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं, ठीक है, मौत के मौके पर आपका क्या बिहेवियर होगा, कोई मेहमान आएगा तो उस वक्त आपने क्या बिहेवियर अख्तियार करना है, किसी कोई बीमार हो जाए तो उस वक्त आपका सोशल बिहेवियर क्या होगा। तो उस हर माशरे के अलग अलग तकाजे होते हैं, बस आप देख लें सलाम का अंदाज, लिबास, ज़बान, रस्म व रिवाज, ये सारे हर माशरे के अलग अलग होते हैं। तो जो बच्चा जिस माशरे में जन्म लेता है उसके माँ बाप उसको उस अंदाज से तरबियत देते हैं कि इस माशरे की ये सकाफत है, उस सकाफत के मुताबिक उसको ढाल दिया जाए और फिर वो उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता रहता है। फिर वो जब उसको सीख लेता है, सीखने के बाद खुद इस काबिल हो जाता है कि वो सकाफत का तर्जुमान बन जाता है, फिर वो जब उसकी शादी होती है वो अपनी नहीं यानी जो उसके बच्चियाँ जन्म लेते हैं तो उन बच्चों को फिर वो सकाफत उसमें मुंतकिल करते रहते। तो इस तरह से ये समाजी तरबियत जो है उस समाज की सकाफत को मुंतकिल करने का नाम है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक बच्चा जो है जिस माशरे में जन्म लेगा उसकी जो सकाफत होगी उसके अंदर मुंतकिल कर दी जाएगी वालदैन और उसके जो अतराफ में जो लोग होते हैं उनके वसीले से उनके ज़रिए से, फिर वो बच्चा उसको समझता है कि यही ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ है, इसी को मैंने समझना है। अगर इससे हट के किसी दूसरे वो कहेंगे तो लोग उसको कहेंगे ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे ऐसे, तो इस तरह वो फिर उसको समझता है कि यही सही तरीका है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। इस अंदाज़े ज़िंदगी को समाजी तरबियत कहा जाता है।
अच्छा, ये तो समाजी तरबियत हो गई। अब हर एक, इसका मतलब ये है कि हर एक इलाके के हवाले से ये जो है ना वो तरबियत मुख्तलिफ हो सकती है।
जैसे मशरिक़ का माशा है, यहाँ जो जन्म लेता है शख्स उसकी जो ज़िंदगी गुजरती है वो मशरिक़ के तकाज़ों के मुताबिक होती है। एक मगरबी माशरे में बच्चा जन्म लेता है उसकी जो तरबियत होती है वो मशरिक़ी वो मगरबी माशरे के तनाजुर में होती है। अब आप इसी तरह देखते हैं कि मगरब वाले जब मशरिक़ में आते हैं, वैसे जैसे मिसाल के तौर पर किसी ऐसे माशरे में चले जाते हैं जब पर्दे का बड़ा खसूसी तौर पर इंतज़ाम किया जाता है, तो ये कैसे लोग हैं, बड़े बैकवर्ड लोग हैं। अब इसी तरह ये मशरिक़ का माशरे का जो फ़र्द है जिसकी तरबियत उस अंदाज से हुई है कि पर्दा करना चाहिए, जब वहां मगरिब में जाते हैं बोले बेहया, बड़े बेहया लोग हैं, तो उसकी बेहया उसको पता ही नहीं कि बेहया क्या होती है, उसको पता ही नहीं कि बेहया का कोई इकदार है नहीं। उनके माशरे में ये बेहया इकदार की शुमार में शुमार होती है कि अपने जिस्म को लिबास को किस माशरे के तकाजों के मुताबिक पहनना, तो इस तरह से वो उनके लिए बेहया ही होती है, उनके लिए दकयूसियत होती है। तो क्योंकि तरबियत इस अंदाज से हुई होती है तो उनको वो बेहया ही महसूस होती है, उनको वो अपना क्या कहते हैं दकयूसियत महसूस होती है।
खूब। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब वहाँ पर अगर ख़ास तौर से हम मशरक़ की बात करें, इंशाल्लाह इस पर तफसीली बात करेंगे हम आखिर में, मशरक़ और मगरिब का तकाबले जायदा इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर ना। तो अगर हम उनको देखते हैं तो उनके अंदर जो बज़ाहिर लड़कों की या लड़कों हमें जो महसूस होता है देखने से, लड़का और लड़की की सोशलाइजेशन हो रही होती है, वो मेरा ख्याल फ़र्क नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल। अच्छा, बुनियादी चीज़ें पहले तो हम तकाबुल जैसा है मशरक और मगरब का, इस्लाम को और दीन की तो हमने बात ही नहीं की ना अभी तो हम सिर्फ इसकी बात करें कि मशरक का माशरा है, एक मगरिब का माशरा,
इस पर बात करेंगे
इंशाल्लाह। मशरिक के माशरे में लड़की की अलग अंदाज से तरबियत की जाती है, लड़के की अलग अंदाज से भी आती है। मशरिक के अंदाज में लड़की की तरबियत की जाती है, उसे बताया जाता है कि भाई इसने जो है माशरे में बाहर निकलना है, रोज़ी कमानी है, घर का बोझ उठाना है, तो उसको उस अंदाज से तरबियत दी जाती है। लड़की को उन्होंने घर का बोझ उठाना है, घर के अंदर बच्चों की तरबियत करनी है, घर का ख्याल रखना है, जब शादी होने के बाद उसे अपने ससुराल के साथ जो है ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, उसके साथ साथ जो है उसने जो है घरेलू मामला में जैसे मेहमान नवाजी कैसे की जाएगी, ससुराल के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जाएंगे, रिश्तेदारों के साथ कैसे ताल्लुकात रखे जाएंगे, इन तमाम चीज़ें जो इस तरह किया जाता है कि उसको घरेलू तरबियत इस अंदाज से दी जाती है बचपन। इसीलिए आप देखते हैं कि मशरक़ी के माशरे में ख़वातीन की समाजी तरबियत ज़्यादा होती है, तालीम के ऊपर कम तवज्जो होती है। वो कहते हैं भाई इसको पढ़ा लिखा के क्या करना है, लिहाजा इसने जो है घरेलू जिम्मेदारी अदा करनी है, तो इस अंदाज से उसकी तरबियत की जाती है कि भाई इसको कल को इसने घर चला, वो शादी होकर घर चले आना है, तो इसकी तालीम इसके लिए इसलिए मुफीद नहीं हो सकती। लिहाजा इस तरह से मशरक़ी माशरों में जो है लड़कियों की तरबियत की जाती है, समाजी तरबियत कि हर चीज़ अगर मसलन मिसाल देता हूँ कि मसाल के मशरक़ी माशरों की ख़वातीन जो होती हैं, जो वालदाएँ होती हैं अपनी बेटी, देखो घर का सफाई रखा करो, अगर कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा, कर यानी हर चीज़ में उसको ये बताया जाता है कि तुमने दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। ये तरबियत उसकी ये होती है कि इस तरह से बच्चा जो है या बेटी जो है लड़की जो है उसको इस बात का एहसास होता है कि मैंने किस किस का किस तरह कैसे ख्याल रखना है। मसलन सबसे पहले तो शोहर है, उसके साथ उसकी क्या वो उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, फिर उसके बाद शोहर के हवाले से जो उसके मजीद रिश्तेदार हैं उनसे उसकी किस तरह से रिलेशनशिप होने चाहिए, तो इस तरह से उसकी तरबियत की। इसके तनाजुर में आप मग़रिब के माशरे में देख लें तो वहाँ एक अलग अंदाज से तरबियत होती है। तो हम माशरे के मुताबिक बच्चे को ज़िंदगी गुजारने का जो है तरीक़ा जो सिखाते हैं उस तरीक़े के मुताबिक ही उसको हम समाजी तरबियत के ज़ुमरे में लेते हैं।
अच्छा, बहुत खूब। अच्छा ये फरमाइएगा कि हम इस पर थोड़ा सा और अगर हम इसको लड़का लड़की को फ़र्क वाजे करना चाहें तो क्या ये तरीक़ा सही है जो राइज है मग़रिब में कि उनके कोई फ़र्क नहीं है और हमारे यहाँ फ़र्क है, और फ़र्क में जो चीज़ें हमें राइज की जाती हैं क्या ये देनी हवाले से भी सही है?
नहीं, देखिए ये बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ जैसे ये इस तरीक़ा तरबियत इख्तियार किया जाता है, मैं इस चीज़ को सही समझता कि अच्छा। फिर दूसरी बात ये कि लड़का हो या लड़की हो दोनों को तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि आपने ज़िंदगी गुजारनी कैसी है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए ना आपको मशरिक़ को फॉलो करना है ना आपको मगरिब को फॉलो करना है, आपके पास एक निज़ाम ज़िंदगी मौजूद है, उस निज़ाम ज़िंदगी के अंदर आप उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो वो जो है दीन इस्लाम ने जो आपके सामने पेश किया, तो उस दीन इस्लाम की मतलब यह है कि लड़की जो है या लड़का दोनों जो है उनकी तरबियत इस अंदाज से की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान की आयत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा ही की तरफ से लौट के जाना है। तो हमने ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले ये देखना है हम आए कहाँ से, हमने जाना कहाँ है और करना क्या है। तो बीच की जो ज़िंदगी है ये करना क्या है इसकी तरबियत है कि हमने उस बच्चे को ना लोगों का गुलाम बनाना है ना अपने नफ्स का गुलाम बनाना है, बल्कि हमने खुदा का गुलाम बनाना है। खुदा का गुलाम सुना यानी बंदा, ठीक है। तो खुदा का अब हम मस्जिद में देखते हैं तो वो लोगों की गुलामी करता है, हर चीज़ में लोगों का ख्याल करता है, बकरी में अपने नफ्स का दादे मैं खाऊँ ना खाऊँ तुम्हें से क्या मैं पहनू ना पहनू से, इट्स माई लाइफ ठीक है। तो अब ये दोनों जो है इसमें माशरा परस्ती है, इसमें जो है नफ्स परस्ती है, अब दोनों जो है इंतहा पसंदी है। इस्लाम जो बताए नफ्स परस्ती ना माशा परस्ती बल्कि खुदा परस्ती है।
सर इस पर बात करते हैं मज़ीद ना, चूँकि हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, इस्लाम पर हमें फोकस भी रखना है, तो इसे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन कराम ये खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लाते हैं, उसकी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके पूछेंगे इनसे कि इस्लाम ने क्या सोशलाइजेशन का तसव्वुर पेश किया है। हमारे साथ आइए। वेलकम एक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है प्रोफेसर मेहदी हसन साहब से सोशलाइजेशन के हवाले से। हम प्रोग्राम के हिस्से में इस्लाम पर फोकस करते हुए बात करेंगे सोशलाइजेशन और इस्लाम का तसव्वुर। सर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने, अब ये फरमाइएगा क्या इस्लाम ने कोई सोशलाइजेशन का कोई तसव्वुर पेश किया है, और अगर पेश किया तो वो क्या है?
जी, अब तरबियत के हवाले से देखें वक्त तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी बात यह कि सारा फोकस जो इस्लाम का तरबियती के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने 124,000 अंबिया इकराम भेजे, ठीक है, चार बड़ी किताबें आईं, 12 इमाम, 14 मौसूमीन, इन सब ने जो इंसान के किरदार की तरबियत के हवाले से अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा इसलिए सबसे बुनियादी जो है फोकस जो किया जाए तो इंसान का किरदार ही है कि उसका किरदार जो है कैसा हो कि वो इंसान जो है इंसान कहलाने के हकदार हो। क्योंकि इंसान जब भी इंसान कहलाने का होगा जब उसकी तरबियत होगी, बगैर तरबियत के एक आदमी तो हो सकता है इंसान नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिहाजा इस तरह अब इस्लाम ने जो हम मुख्तसर से वक्त में कहेंगे, जैसे मौला अली का फरमान है कि दीगर मासूमिन का भी फरमान इसमें मिलता है कि तरबियत के हवाले से बच्चे की ज़िंदगी को आप तीन हिस्सों में तकसीम कर दें। तो तीन हिस्सों में जो है शुरू के जो 7 साल है ना, वो बच्चा जो है वो आपका आका है, यानी बादशाह है आपका, वो मुशाहिदे से सीखेगा जो आप कर रहे हैं ना। और याद रखिए कि जो तरबियत तो इंसान अगर 90 साल का भी हो जाए ना, तो जो उसकी मेमोरी में शुरू के 7 साल में फीड हो जाएगा ना, तो ये एक समझ लें बच्चा एक रिकॉर्डिंग मशीन है, ठीक है। जो आपने कर रहे हैं, तो अगर आप बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, आप उसको आलिम बनाना चाहते हैं, आप उसको जज बनाना चाहते हैं, आप उसको वकील बनाना चाहते हैं, या माशे किसी मनसब को बौखना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना, ये तो अलग उहदे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो ख़ुद आपको अच्छा इंसान प्रेजेंट करना होगा, यानी आप मिसाल के तौर पर इसमें जो है तरबियत के हवाले से जो है अगर एक बाप है तो बाप का क्या किरदार है, एक माँ है तो माँ का क्या किरदार है, ठीक है। तो बाप का किरदार क्या है, जब घर में आता है तो ऐसा नहीं होगा कोई जल्लाद आ गया कोई वो आ गया, घर में आया तो पता चला शफीक और रफीक जो है बाप दाखिल हो गया। तो बच्चे आके आपसे चिपट जाएँ, आपसे उनसे इतनी मोहब्बत इतनी प्यार इतनी शफ़त करें कि बच्चे जो है आपको जो बच्चा बाप जो होता है रब्बेसान ही होता है, ठीक है। खुदा ने उसको बच्चे को नहीं पता कि मुझे रोटी कौन देता है कपड़ा कौन देता है, वो तो समझता है अब्बू लाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जब अब्बू अभी शुरू के जो 7 साल में है उसको जो मोहब्बत प्यार शफ़त दी जाएगी, नरमी की जाएगी, उसके साथ रिस्पेक्ट की जाएगी, ये बाप का किरदार होगा। तो बाप जितनी मोहब्बत से शफ़क़त से और नरमी से और मोहब्बत से उसके साथ बिहेवियर करेगा वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। अब फिर उसमें ये सबसे बात है मासूमिन का फरमान है, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बच्चों की तरबियत में जो है ज़बान से ज़्यादा अमल से तरबियत दो। मिसाल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने सोचा मेरी बच्ची बोलने चल के काबिल हो गई, तो मैंने घर में सिपारा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया ना, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि बाबा जो है सिपारा पढ़ते हैं तो एक रहल निकाल के लाई, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि बाबा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा देख रहा है कि अब्बा सिपारा पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं तो वही करें। तो लिहाजा आप ज़बान से नहीं, बच्चों को कुरान पढ़ो उसे क्या पता कुरान क्या होता है, उसे को पता क्या हो, उस वो चीज़ जो देख रहा है कि अगर बाप माँ की इज्जत कर रहा है, माँ बाप की इज्जत कर रही है तो वो इज्जत करना सीखेगा। अगर बाप नरमी से बात कर रहा है, माँ नरमी से बात कर रही है तो वो नरमी सीखेगा। तो लिहाजा दीन की तालीम जो बुनियादी है कि आप ज़बान से तालीम है, उसको आप कितनी वो किताबें पढ़ा देंगे, फ़लाँ फ़िलासफ़र ने ये कहा है फ़लाँ फ़िलासफ़र ने ये कहा, उसके लिए कुछ ना फ़िलासफ़र को पता है ना दानिश्वर का पता है ना इंटेलेक्चुअल का पता है, उसे तो ये पता है कि यही सब कुछ है माँ बाप। तो लिहाजा माँ बाप का जो किरदार है अमली किरदार, ठीक है, वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है उसी को सीखा। अब घर के माहौल में आपने देखा है कि जैसे ही अजान का वक्त हुआ कि वालदा ने फट घोड़ा सारे काम छोड़े, वजू किए, दुपट्टा लपेटा और वो खड़ी, उसे नहीं पता ये नमाज क्या होती है, वो तो देख रही है अम्मा ने देखा कि नमाज एक आवाज़ आई कान में और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो बस वो खुद भी वो शुरू कर
दिया,
उससे क्या पता नमाज क्या होती। तो ये है सोशलाइजेशन तरबियत के, आपने बचपन से उसके सामने वो माहौल पेश करना है जो आप चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा ऐसा हो जाए। आप मैं जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था तो उसमें मैं एक प्यून था, ठीक है, वो यहाँ उसका मुँह उसमें पान भरा हुआ और जनाब मावा खाना और पान खाना और ये, तो फिर मैंने उसको मुझे मेरे मेरी शरई जिम्मेदारी थी कि इसकी इसलाह करनी हो, मैंने कहा तुम आपकी शादी हो गई, बोला हाँ, तो मैंने कहा बच्चे कितने, बोला अभी 2 साल का है, तो मैंने कहा क्या चाहते हो तुम्हारा बच्चा भी मावा खाए, क्या तुम चाहते हो कि ये भी जो है तुम तंबाकू नोशी करते हो ये करे, तो बोले नहीं सर ये, तो मैंने कहा जब तुम उसको 10 बार मारो पीटोगे भी तब भी उसको वो नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले काम ये है कि तुम अपना ये चीज़ छोड़ दो और ख़ुद ब खुद। अब उसके वालदे ने कहा भाई ये चीज़ है, जब बच्चे को आप किसी को तरबियत देते हैं, दीन भी ये कहता है कुरान पाक में लिखा है, वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते, तो पहले खुद करना होगा फिर उसके बाद। तो ये तरबियत का एक तरीका है और तरबियत का तरीका ये माँ बाप की बुनियादी जिम्मेदारी होती है ताकि वो बच्चों की माशरे के मुताबिक जैसे आप चाहते जाते हैं। अब आप एक दीनदार माशरा है तो वह यकीनन दीन के मुताबिक लेके आएगा बच्चे को अपने कि उसी की तालीम, क्योंकि मुख्तसर हम तफसीलात में तो नहीं जा सकते, इख्तसार से ही गुफ्तगू करनी है। तो लिहाजा ये है कि बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम क्या कहता है कि बच्चे की तरबियत को अपने साथ तीन हिस्सों में तकसीम करो। शुरू के साल में तो उसको बिल्कुल फ्री हैंड दे दो, उसे वो मुशाहिदा करेगा, देख रहा है कि उसके घर के माहौल में क्या हो रहा है, फिर दूसरे 7 साल से उसको तालीम देनी शुरू कर दो, ठीक है। तालीम देने के बाद अब उसके बाद जो है बाकी जो 7 साल हैं वो आपका मुशीर है, अगर इन 21 सालों में वो सही नहीं होता तो फिर अब उससे किसी अच्छे की तवक्को नहीं की जाती।
सही,
तो बुनियादी चीज़ ये आपने अपना खुद जो है जो आप चाहते हैं कि बच्चा वैसे बने तो उसको वैसे माहौल प्रोवाइड करें, वैसा माहौल मुहैया करें। जब तक माहौल मुहैया नहीं होगा बच्चा वैसा किरदार अदा नहीं कर सकता। ये दीन की बुनियादी तालीम।
बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, जो तीन अदवार बयान किए, मासूमीन अलैहिस्सलाम भी बयान करते हैं। तो सर, एक माशरे के लिहाज से एक मुश्किल है हमारे साथ, वो हमने भी देखा कि हम पहले मग़रिब ने क्या किया कि मग़रिब ने पहले जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस रखा क्या कहते हैं बच्चों में, और उन्होंने नीचे आके बच्चों को बहुत छोटी एज में पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत छोटी एज में स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया। अब उसको, चूँकि हम तो मुकल्लिदीन हैं, हम तो कभी अक्सर यूरोप की और कभी मग़रिब की तकलीद कर रहे होते हैं, उनकी तकलीद में हमने भी ये काम करना शुरू कर दिया। पहले जो है ना वो नर्सरी KG KG1 में, क्लास KG1 KG2 में होती थी, अब मॉन्टेसरी शुरू हो गया। 2.5 साल का बच्चा, ये जो आपने बयान की हदीस, ये 7 साल उसकी बादशाही के दौर हैं, ठीक है। अब वो बादशाहत के बजाय 2.5 साल में उस पर बोझ शुरू हो गया कि सुबह उठ के उसको स्कूल जाना है, वहाँ से जो है ना वो स्कूल से आना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा उसको होमवर्क मिलना शुरू होगा, वहाँ पर उसको होमवर्क भी कराना है, वालदैन के लिए भी एक परेशानी है। अच्छा, खुद मग़रिब ने इस चीज़ को समझ लिया, उन्होंने जो है ना वो बच्चों को बड़ी एज पढ़ाना शुरू किया और हमें इस तरफ जो है ना फंसा के रख दिया। क्या ये मुश्किल आपको नज़र नहीं आती कि हाँ ये ऐसी है नहीं है सोसाइटी की?
कमर भाई मैं ज़रा से वजात कर दूँ। असल में मग़रिब की जो निज़ाम तालीम है ना, वो असल में इस्लाम का निज़ाम तालीम है। लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, क्योंकि असल में जिसको हम चम समझ रहे हैं कि बच्चों को वो स्कूल बुलाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो आप देखें जिसका लफ्ज़ आपने नाम मिसाल किया कि दो हमारी निज़ाम तालीम है, एक मॉन्टेसरी सिस्टम है, एक KG सिस्टम है, ठीक है। इनमें किस तरह से तालीम दी जाती है? तालीम हम समझते हैं लिखना पढ़ना होता है। जैसे मेरे एक दोस्त था, उसने कहा मैंने बच्चे को ना अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है, तो उसकी एज जो है मेरे ख्याल से 3 साल थी, तो मैंने उसको जो है 2 के पहाड़े याद करा दिए। तो मैंने कहा यार बेवकूफ़ आदमी, ये क्या किया तुमने? उसको अभी क्या पता 2 2 4 क्या हो रहा है, अभी तो उसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, अभी तो उसने वो कहता है आंखों से देख रहा हो क्या रहा है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि जो आप अगर KG की बात करते हैं, मॉन्टेसरी की बात करते हैं, ये दोनों सिस्टम के हैं, उसमें जब बच्चा जाता है ना तो उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता उसको, उसको सिर्फ खेल खेल में सिखाया जाता है। मसलन उसको रंगों से आशनाई सिखाती है, ये क्या है, ग्रीन कलर है, ग्रीन किसका होता है, लीफ का होता है, ठीक है, ये मून है, ये येलो कलर का होता है, तो वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, वो टीचिंग नहीं है। जिस तरह से हमारे से मुराद है उसको लिखाना पढ़ाना है, वही दीन की तालीम है। दीन कहता है ऑब्जर्व करने दो, लिखने दो उसको। जैसे मैंने कहा ना दोस्त की मिसाल की, उसने 2 के पहाड़े उसको याद करा दिए, 2 का टेबल उसको याद करा दिया, तो 2 का टेबल उसकी उस एज में नहीं है। आप देखें मॉन्टेसरी में किसी को आपको 2 का टेबल याद नहीं कराते। बच्चा जाता है कलरिंग करके आता है, वो करता है, तो उसको जो खेल ही खेल में टीचर उसके साथ बैठ जाती है, घर का माहौल फराहम करती है, बिल्कुल माँ का किरदार अदा करती है, मोहब्बत और प्यार से जो है ना उसे माहौल से आशनाई सिखाई जाती है। क्योंकि माहौल से जब आशना हो जाता है फिर जाके वो आप देखें, अब पहली क्लास में बच्चा कब जाता है, शुरू की मॉन्टेसरी, आज से 2.5 साल में बच्चे को दाखिला दिया जा रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, जैसे एक मॉन्टेसरी सिस्टम है या KG सिस्टम है, उसमें 2.5 साल से बच्चा जब शुरू के फिर जाता है, फिर उसके बाद KG1 KG2 फिर उसके बाद 1 शुरू होती है, तो 6 से 7 साल उसकी उम्र पहुँच चुका होता है। वही इस्लाम की तालीम है कि शुरू से जो है आपको बच्चों को खेल कूद नहीं दिया जाए, उसको मॉल से आशना होने दिया जाए। फिर तो ये मग़रिब की तालीम जो है ना, जिसको हम लोग थोड़ा सा मैं मजाक करना चाह रहा था, क्योंकि ज़रूरी था ये कि ये जो मग़रिब ने लिया है उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया है। क्योंकि साइंस कैसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, रिसर्च तहकीक कैसे करिए, तो अब उसमें तहकीक कर उन्होंने कहा कि इस उम्र में बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना, इस उम्र में बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, देखो वो मुशाहदे करके।
अच्छा, अब ये इस पे वाली बात है ना कि हमने चूंकि इन्होंने इस्लाम से सीखा है
जी,
और हमने यूरोप से सीखा
है, हम तो उसकी तकलीफ है। अच्छा, बस ये है कि पलट के वापस हमारे तक,
लेकिन इसके ना कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, तो हमने उनसे ये सिस्टम तो लिया। लेकिन अब आप अगर बच्चों को देखें, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हर स्कूल की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर अगर आप स्कूल्स को देखें तो वो उस तक तो सही है, मॉन्टेसरी तक तो सही है कि मॉन्टेसरी में जो है ना वो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो होमवर्क नहीं मिला, लेकिन उसे जैसे ही वो प्रेप 1 में आता है, अभी उसकी उम्र है 3.5 साल, उसको होमवर्क मिलना शुरू हो गया। अब वो घर पे भी आकर उसको वालदैन की भी टेंशन है, उसको भी टेंशन है कि अभी पढ़ना है, तो वो उसका बादशाहत का दौर तो ख़त्म हो गया कि वो जो आज़ादी है कि भाई बच्चा जब उठेगा, जब तरबियत का एक अलग सिलसिला है कि, लेकिन उसमें तो मार के उठाना भी है, स्कूल भेजना भी है, स्कूल से आना भी है, फिर सुलाना भी है, उसकी बादशाहत का दौर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता।
यकीनन वो सबसे हो रहा है, मसला ये है, लेकिन माँ बाप जो है आज के जैसे हमारे माशरे के अंदर तो ये होते हैं कि उन्होंने माशरे के साथ चलना है, معاشرے کی تقاضے ہیں، اگر آپ نے معاشرے کے ساتھ نہیں چلے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اب آپ بہت ساری، ابھی میں کل ایک خاتون کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس خاتون کو ابھی وہ جو ہے اس نے پوسٹ ڈاکٹرل کی ڈگری لی ہے، کسی یاد نہیں آ رہا کس کنٹری سے، تو اب اس نے جو ہے پوسٹ ڈاکٹرل کی ڈگری لی تھی۔ اس نے کیا شروع کے ساتھ ساتھ بچوں نے اس کو ماں باپ نے گھر میں پڑھایا، اسکول وہ گچی گئی نہیں جو ہمارے ماحول کے ہوئے، اور اس نے جناب باقاعدہ خود سیلف اسٹڈی کر کے جناب وہ اپنا کیا کہتے ہیں او لیول کا امتحان دیا، پھر اس کے اے لیول کا امتحان دیا، پھر اس کے بعد اس کے والدین نے اس کو
بقرہ ہوم اسکولنگ کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے آج کل،
تو اس میں یہ کہ اب یہ ہے کہ اب ہمارا یہ جو یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا، وہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجا تو ہم ماحول سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو غلامی وہی والی بات ہے کہ ہم ماحول کے اندر سے، مین چیز سمجھنا ہے کہ آپ کو بچے کو سکھانا کیا ہے، آپ بنانا کیا چاہتے ہیں، سکھانا کیا چاہتے ہیں، اور تعلیم کیا دینی چاہیے۔ تو تعلیم کا جو ایک کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے نا کہ لکھنا اور پڑھنا، یہ لکھنا پڑھنا ایک مرحلے میں شروع ہوتا ہے، تعلیم تو یہ کہ بچہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے کی تربیت، آپ کی بنیادی ہمارا موضوع ہے کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، جیسے آپ نے دین کا کہا، دین کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کو جو انہوں نے تعلیم دی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ بچے کی تربیت شریک حیات کے انتخاب سے ہوتی ہے۔
سبحان اللہ،
ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے جو ایک دینی ماحول کے اندر پلی پڑھی جوان ہوئی ہے، تو یقیناً پھر وہ ایک ایسی ماں ہوگی جو بی بی سیدہ کا کردار ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی عورت کا انتخاب ہی نہیں کیا، آپ نے معاشرے کے مطابق ہو، جیسے رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے اندر چار چیزیں محرک ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے، ایک دولت ہوتی ہے، ایک بڑا خاندان ہوتا ہے، ایک دین، تو لہٰذا تم دین دیکھ کے شادی کرو۔ تو لہٰذا دین کا مطلب یہ کہ جہاں اس کو ایک تربیت یافتہ عورت ملے گی تو خود بخود وہ بچے میں وہ چیز منتقل کرے گی، لیکن جب حسن دیکھ کے، دولت دیکھ کے اور طاقت وہ خاندان دیکھ کے شادی کریں گے تو پھر وہ اس طرح ہی کے بچے جو ہیں تربیت یافتہ ہوں گے۔
اچھا سر، اگر ہم بات کریں سوشلائزیشن کا عمل اگر مکمل نہ ہو تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
اسی لیے معاشرے میں مجرمین پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیے، اب میں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے، دیکھیے آپ نے نفسیات کرنے کی اصطلاح سے مطلب تھی آئی کیو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آئی کیو کے بعد ایک مثال ہے، بڑا بچہ بڑا ذہین ہے، میتھامیٹکس میں جو ہے 98 مارکس لے لیتا ہے، بڑا بچہ بڑا ذہین ہے، وہ ماٹک، لیکن وہ سوسائٹی میں سروائیو نہیں کرتا، وہ لوگوں سے کمپیٹ، وہ یعنی کہ پبلک میں بیٹھ نہیں سکتا، اس میں اتنی اعتماد نہیں کہ لوگوں کو جواب دے سکے، کسی کو فیس کر سکے، تو اس کی آئی کیو لیول جو ہے بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے اب دوسری نفسیات میں استعمال ای کیو کی ہو رہی ہے کہ ایموشنلی وہ کتنا ہوا۔ میں نے جو ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے ایس کیو، ایس کیو یعنی کہ وہ سوسائٹی میں کتنا ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن وہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ سفائی پڑھتے ہیں، بہت ہیں بھائی، آپ دیکھا تو اتنے پڑھے کتنا پڑھا ہے، نہ کالج گئے نہ یونیورسٹی کی شکل دیکھے، لیکن سوسائٹی میں کامیاب آدمی، ایک آدمی اس نے یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی لیکن سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں نے ایک نئی اصطلاح وجا کیا جس کو کہتے ہیں ایس کیو،
ایس کیو،
آئی کیو، آئی کیو استعمال کرتے ہیں نفسیات میں، سوشولوجی میں استعمال کرتا ہوں ایس کیو، یعنی وہ سوسائٹل کتنی کوئیشنٹ ہے، آئی کیو کا مطلب انٹیلیجنٹ کوئیشنٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب سوسائٹل کتنا کوئیشنٹ ہے، یعنی وہ سوشلی کتنا سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس نے بڑی ڈگری لی ہے، بڑا پڑھا لکھا پڑھا، اس کے پاس معلومات ہے، لیکن وہ سوسائٹی کے لوگوں سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا،
ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا،
اس کو سوسائٹی میں کیسے سروائیو کرنا ہے، مہمان آ گئے فیس ہی نہیں کر سکتا، دروازے پہ آ گئے جا کے دروازہ کھول کے بات نہیں کر سکتا، کون آ گیا کیا، خدا نہ کرتا کوئی اوپر سے کیسے کسی گھر میں رہتے ہیں، کوئی آ کے زور سے بات کر رہا ہے تو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس کو، وہ نہیں کرتا۔ تو سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے سوشل، یعنی میں نے ایس کیو کی جو اصطلاح استعمال کی، اس کو سوسائٹی کو کمپیٹ کرنا نہیں، سوسائٹی میں ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے، کیسے ماحول ہے۔ ابھی جیسے مثال دے دوں، میں ابھی میں میرے ایک جگہ ایک ادارے سے ایک کالج سے دوسرے کالج میں میرا ٹرانسفر ہو گیا، وہاں گیا تو جب نیا سیشن شروع ہوا تو تقریباً 65-70 بچے کلاس میں پہلے دن بیٹھے ہوئے، اور بیٹھے بیٹھے تو اس میں ظاہر ہے پڑھنے پہ آتے ہیں، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، اور اتنے شرارتی کہ بھائی ناقابل برداشت، لیکن مجھے تو اس کو ڈیل کرنا رہا، تو اب کیا گیا، جیسے ہی میں نے بورڈ پہ لکھا کچھ یہ شروع ہو گئے، تو میں نے ایک تھوڑا مس کیا، اب کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ جذبہ، کون ہے بدتمیز، یو یو، میں کہتا کوئی بات نہیں، کون ہے، آپ بجا رہے ہو، چلو بجا لو یار، کوئی بات نہیں، ہم سب مل کے آپ کے ساتھ سیٹی بجا دیں، دو منٹ کے لیے بجا لے، وہ چپ چپ ہو گئے، پھر اس کو کچھ شور مچانے کے لیے، میں نے کہا چلو بھائی لطیفہ، ہر بات پہ ہنسنا ہے، کسی بات پہ شرارت کرتی ہے، تو میں نے کہا دیکھو بھائی دو منٹ کے لیے ہم شرارت کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا لطیفہ کچھ آتا ہے آؤ یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ اور کر لیتے، ٹھیک ہے، اب جتنا ہنسنا ہنس لو، کوئی بات نہیں، میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں، جتنا ہنسنا ہنس لو، ہنس لیے دل بھر گیا، چلو اب آپ پڑھائیے ذرا بھائی، अब वो पूरी क्लास में
टेक्निकली डील करना होता है बच्चों को,
तो ये चीज होती है। तो अब वो सोशली जो है ना, आप कितने क्वेश्चन्ड हैं, मेरा मकसद सोशली, सर मैं तो क्लास नहीं ले सकता भाई, ये बच्चे बड़े बदतमीज हैं, मैं डील नहीं कर सकता। तो ये है सोशली क्वेश्चन्ड, यानी आप सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में जो एनवायरमेंट आपके सामने आया है, जो माहौल आया है, उसमें आप उसको कैसे एडजस्ट होते हैं, इसके लिए तरीके
जबरदस्त। सर बच्चों की सोशलाइजेशन में कौन कौन से अवामिल कारफरमा होते हैं और उन अवामिल का रोल क्या होना चाहिए?
ठीक भाई, जैसे आपने ये फरमाया इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से अवामिल हैं, तो सबसे बुनियादी किरदार तो माँ का किरदार है, ठीक है ना। कोई जैसे मैंने आपके दीन के हवाले से बता दिया कि माँ का इंतखा अगर आपने ऐसे किया, अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर माँ तरबियत याफ्ता नहीं है तो आपने बच्चे से ज़्यादा माँ पे काम करना है।
सही,
ठीक है ना, बच्चे तो अभी छोटा ही है, उसमें तो सबसे पहले आपने माँ के मिसाल, माँ को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। अब आप पहले तो ये दो तरह से होते हैं, आपने ये देखना है कि आपने बच्चे की तरबियत कर दी है, अगर बच्चे की तरबियत नहीं करी तो माँ चीख दी है, उससे ज़्यादा आप चीखें। अब उसमें दो सूर रहते हैं हाथों, एक माँ चीख रही है, एक बाप चीख रहा है, तो घर का माहौल जो है ना एक जंगे वो क्या मैदान बना हुआ है। तो लिहाजा आपने अपनी नस्ल को बचाना है, अपनी नस्ल की तरबियत करनी है, तो लिहाजा माँ चीखती है तो आप खामोश हो जाए, एक चीख चीख के तब वो होता है। अब उसमें ये क्या, अब सबसे पहले उसकी तरबियत हो रही है ना, कि अब उसको गुस्से, फिर जब ठंडा माहौल हो तो उसको सिखाने के, तो गुस्सा से जो है ना कोई काम हल नहीं होता, दुनिया के सारे काम मोहब्बत से हल हो जाते हैं, ठीक है। दुनिया की जितनी भी बड़ी जंगें भी हुई ना, जितना गुस्सा हुआ फिर आकर टेबल टॉक पे ही आके ख़त्म हुई, तो लिहाजा अब हर काम नौ से। तो लिहाजा जो आपने फैक्टर पूछे कि कौन कौन से फैक्टर, तो पहला फैक्टर जो है माँ का है, कि माँ का किरदार, कि माँ की अगर तरबियत याफ्ता हो ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर काम करना, उसकी जो है इसलाह करनी है, इसलाह में आपका किरदार बुनियादी, उसमें बहुत सब्र चाहिए, बगैर सब्र के ना कोई ज़िंदगी वो नहीं हो सकती कामयाब, तो लिहाजा उसमें है। और फिर दूसरा बाप का किरदार है, बाप को और माँ को दोनों जब शफीक और रफीक होंगे तो फिर बच्चे अपने दिल की बात उनसे कहे और फिर जो मसाइल आएंगे उनको डिस्कस करेगा, तो उसको फिर वो अगर घर के माहौल, क्योंकि एक बुनियादी चीज़ ये भी होती है कि अगर बच्चे का आपने उसके जहन में बनानी है, आपने उसको क्या बनना है, क्या कौन से किरदार अदा करना है, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह वो जो है माशरे में भी अच्छा किरदार करने का लोग, तो माँ और माँ का किरदार है। फिर उसके बाद स्कूल है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो है, क्योंकि पहली जैसे हम लोग सोशलाइजेशन में पढ़ाते हैं स्कूल से पढ़ा, यही नहीं है, अब इसको किसी ने इस घर जो है वो खुद स्कूल होता है, क्योंकि वहाँ बच्चा ऑब्जर्व, जैसे मैंने अभी आपको बताया आँख खोलता है तो ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई। जैसे हमारा दीन तो ये कहता है कि भाई, और आज की मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर बच्चा माँ की पेट में भी है तो वो सीख रहा होता है, जो माँ की जो जज्बात और एहसास होते हैं वो सुन रहा होता है, तो वो वहाँ से उसकी सोशलाइजेशन शुरू हो चुकी होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो जब दुनिया में आता है तो फिर वो ऑब्जर्व कर रहा, जैसे मैंने अभी बताया कि वो रिकॉर्डिंग मशीन है, जैसे माँ ने बोला फ़ौरन रोस गया, जाओ यहाँ से, माँ कहती है जाओ यहाँ से, अब उसे नहीं पता जाओ यहाँ से, अब जब कोई गुस्सा करके जाओ यहाँ से, बच्चा रिपीट है, अब माँ को सोचना चाहिए इसने जो कहा जाओ यहाँ से तो क्यों कहा, इसने तो कहीं सुना ही नहीं, तो माँ से ही सुना है, तो यह चीज़ है। तो लिहाजा फैक्टर जो है इसमें माँ का किरदार है, और उसके बाद बाप का किरदार है, बाप भी जी अगर उस तरह से वो बिहेव करता है तो वह बच्चा
करेगा।
फिर उसके बाद स्कूल का किरदार होता है कि स्कूल, इसलिए आप कहते हैं कि अच्छे स्कूल देखा जाए, जब अच्छा स्कूल में जाएगा तो बच्चे की जो है वैसी तरबियत होगी कि बच्चों को हर तरह की चीज़ जो उसके तकाजे उसके मतलब। फिर उसके बाद इर्द गिर्द का माहौल है, अब यहाँ पर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली भी है, सिंगल फैमिली है, जॉइंट फैमिली का अलग माहौल होता है, सिंगल फैमिली का अलग माहौल होता है, तो लगता है ये सारे फैक्टर मिलकर वो। फिर उसके बाद उसके दोस्त यार, कि भाई बच्चा जो है स्कूल में भी दोस्त बनाता है, फिर मोहल्ले के अंदर दोस्त बनाता है, तो वो उसका माहौल, तो ये फैक्टर जो है माँ बाप स्कूल उसके मोहल्लेदार उसके रिश्तेदार, ये उसका माशरा है, उस माशरे में रह के उसकी समाजी तरबियत हो रही है, वो देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है, तो ये वो फैक्टर है जिससे जो उसकी सोशलाइजेशन हो रही थी।
सर आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, अपने बच्चों की सोशलाइजेशन के हवाले से जो प्रोग्राम हमारा, अब इस्लाम ने भी एक क्या, इस्लाम ने भी आपने कहा एक नज़रिया पेश किया है, इस्लाम का नज़रिया सोशलाइजेशन का और मगरिब का नज़रिया सोशलाइजेशन का, इन दोनों का अगर आप तकाबली जायज़ा करें तो किस तरह करेंगे?
बस इस्लाम के नज़रिए में और बुनियादी नज़रिए में देखें, इस्लाम जिस तरह बच्चों की तरबियत देता है और मगरिब जिस तरह तरबियत है, मस्जिद में बेसिकली जिन्हें इकदार की तालीम दी जाती है कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तो असल में जिस आज़ादी की वो तालीम देते हैं ना, जिसको लिबरलिज्म का आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, फ्रीडम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो ये लिबरलिज्म और फ्रीडम के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में समझता है मैं जो चाहे करूँ मैं आज़ाद हूँ, ये है मग़रिब की तालीम। इसके तनाज़ुर में इस्लाम की तालीम देखते हैं, इस्लाम आपको ये आज़ादी तो देता है, लेकिन आज़ादी देने का मतलब सबसे पहले इंसान मानवीय आज़ादी हासिल करता है, उसको ये तालीम दी जाती है कि तुम खुदा के बंदे हो, ठीक है, तो खुदा के बंदे होने की ऐसे से तुम्हारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी नहीं है, अब तुम इसमें आज़ाद हो, یعنی ارادے اور اختیار خدا نے انسان کے اپنے ہاتھ میں دیا ہے. اب آپ کا جبرنی لا جبرا فی الاسلام لا اکراہ فی الدین, ٹھیک ہے, تو لہذا اب آپ جو کچھ کریں گے اپنی مرضی اور اختیار سے کریں گے, تو وہاں نفس کی غلامی میں چلا جاتا ہے. معاشرے کا تو پابند نہیں ہے لیکن جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نفس کی آزادی سے نکل کے, معاشرے کی آزادی سے نکل کے خدا کی بندگی میں چلا جائے. یہ ہے بنیادی طریقہ.
بنیادی یہ مطلب بنیادی فرق, یعنی مولا علیہ السلام جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ان کے پاس, کہتا ہے کہ مولا میں کتنا آزاد ہوں کتنا غلام. مولا نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, کہتے ہیں اٹھا لیتا, کہتے ہیں دوسری اٹھاؤ, کہتے ہیں مولا میں گر جاؤں گا, کہا بس اتنے آزاد ہوتے ہیں غلام. لیکن اسلام شاید مغرب کہتا ہے کہ دونوں ٹانگیں اٹھا کے چلو.
نہیں نہیں, بس مغرب یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں آزاد ہیں. آزاد کا مطلب آپ مجھے نہیں روک سکتے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں,
کانسیپٹ بالکل
وہ نہیں کہتا. یہ میری زندگی ہے نا, مجھے آپ روک ٹوک نہیں سکتے. اسلام کیا کہتا ہے کہ اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے, اب آپ کا اختیار ہے
کہ
اختیاری طور پہ آپ اس چیز کو برائی کو اختیار کریں یا جا کے پھر خدا کے پاس اس کا جواب دینا ہے. یہ بولے اب جب اس جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا کہ دیکھو جس خدا نے مجھے پیدا کیا مجھے اس کی بندگی میں آنا چاہیے, اب اس کے احسان کتنے, ٹھیک ہے, فبئی یہ اعلیٰ رب بیگما تو قسمان, تو انسان تو سر ہی نہیں اٹھا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کسی کو سجدے کی اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے سر ہی نہ اٹھائے وہ سجدے سے. تو یہ والی بات ہے, جب خدا کہتے ہیں میں بول رہا ہوں اس نے دیا ہے نا. ابھی جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں, بنیادی ہماری تعلیم کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا عقیدہ ایک خدا ہے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس وقت صرف ایک لمحے کے لیے اس تربیت یافتہ سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر میری تربیت ہوئی ہے کہ میں اور آپ یہاں پہ اس کمرے میں موجود ہیں, وہ تیسرا کون ہے, خدا ہے.
سبحان اللہ,
جب خدا ہے تو میری اس تربیت ہے. خدا نے مجھے جو نعمت دی, جیسے مجھے میرے ابو نے کوئی چیز دی ہے تو میرے ابو اس سے ناراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, میں ابو کے سامنے ایسے کام کروں گا نہیں کروں گا. تو جس ابو کو میرے رب نے یہ چیز دی ہے, ابو کو میرے رب نے جو چیز دی ہے, تو وہ ناراض نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب میرا یہ ایمان پختہ ہو جائے, اس کی تربیت کرنی ہے. اس کی ایمان کی, کہ ایمان کی, کیونکہ مغرب میں کیا ہے وہ سائنس ہے اور اس دین میں جو ہے ایمان ہے, کہ ان دیکھی چیزوں پہ ایمان لانا. تو جب میرا ایمان ہے کہ ہم دو ہیں اور تیسرا خدا ہے, تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے. تو اس طرح سے جب میں تربیت کو آزاد ہوں اپنے معاملے میں, اور یہ مانوی آزادی ہے, اب میں آزادی اور اختیار کے ساتھ اس کی بندگی کر رہا ہوں, یہ تربیت.
سر بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے, یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا. ناظرین آپ نے گفتگو سماعت فرمائی پروفیسر مہدی حسن کی. آج کا ہمارا عنوان تھا بچوں کی سوشلائزیشن. آپ نے یقیناً اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا, میری طرح میں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا پروفیسر صاحب سے گفتگو کا. سر سے انشاءاللہ پھر کہیں کسی نئے موضوع پہ سر کو زحمت دیں گے اور سر سے گفتگو کروائیں گے. پروگرام کے کسی اور پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.